الصفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورة الدهر کی تفسیر ہم اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں. اس سورت کے اندر بیسیکلی صرف چار یا پانچ حصے بنتے ہیں. پہلا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ جب کہ کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. تو اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی کہ کیا کیا اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. یا تو ماں کے پیٹ کے اندر اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب ماڈرن الٹرا ساؤنڈ سسٹم کے آنے کے بعد ماں کے پیٹ میں تو اچھی خاصی باہر کے انسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اس انسان کی حقیقت، نا مرد ہے، عورت ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہوتی ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں. تو دوسری تفسیر بھی حضرت نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ یعنی اس کا حمل ٹھہرنے سے پہلے یہ جو انسان تھا اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ اس کے اجزائے ترکیبی جو ہمارے بدن کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں جن کو مل کر کے ہمارا بدن بنتا ہے، ہمارا جسم بنتا ہے، وہ سارے کے سارے نیچر میں موجود تھے، سب کچھ پہلے سے موجود تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں بعد میں جا کر کے کیسا انسان بن جائیں گی. ٹھیک ہے، تو پہلی آیت کی یہ تفسیر ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد دوسری میں فرمایا تھا کہ امشاج کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو یعنی سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا. تیسری چیز کیا تھی تیسری آیت کے اندر؟ کہ پھر ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دے دی. اما شاکرم و اما کفورا. راستے کی ہدایت کا مطلب کیا؟ کہ اس کے اندر ایک فطرت پیدا کر دی، ایک فطرتی طور پر اس کے اندر یہ سمجھ پیدا کر دی کہ اس کا پروردگار کون ہے. ٹھیک ہے، پروردگار کی پہچان اس کے اندر ہم نے پیدا کر دی. یہ پہچان ہر انسان میں ہوتی ہے. اسی بنیاد کے اوپر یہ تفسیر ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالی کا انکار نہیں کرتا. کوئی بھی انسان، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتا. جھوٹ بے شک بول سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور میں اللہ کا انکار کرتا ہوں اور کوئی اللہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے وہ. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے کہ ایک ہے خالق، ایک ہے مالک. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ایتھیس بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اگر تو ہے، اس طرح سے مانگتا ہے نا یہ دعا. ٹھیک ہے، جب کہیں جا کے پھنستے ہیں نا تو ایسے یہ بھی دعا مانگتے ہیں جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اپنی زبان سے خالی. تو اللہ کی پہچان دے دی. اور دوسرا یہ کہ جو بنیادی طور پر خیر اور شر والی چیزیں ہوتی ہیں نا، بنیادی طور پر ایک انسان کی فطرت کے اندر اچھائی کو پسند کرنے والی فطرت ہوتی ہے اور برائی کو ناپسند کرنے والی فطرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اور کوئی کسی کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آ رہا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا بنیادی فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی ہدایت دے دی. پھر اس کے بعد اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر کے اس دنیا میں بھیجا کہ اب تم جو ہے وہ جو بھی راستہ اختیار کر لو. تو پھر ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر کے ہم برا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم خواہشات کے تابع نہ ہوں بلکہ ہم جو فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسی فطرت ہی کو برقرار کر کے رکھیں، اپنے اندر برقرار رکھیں، تو پھر ہم جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے واسطے ہم تک پہنچی ہے ہم اس ہدایت کو مان لیں. यानी शुक्र करने वाले बन जाए। ठीक है, तो इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा का ये मतलब हुआ कि इख्तियार जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको शुक्र करने में इख्तियार करें, या शुक्र करने में इस्तेमाल करें, या कुफर करने में इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद काफिरों को जो कि कुफर करने में इस्तेमाल करते हैं, उनका अल्लाह ताला ने अंजाम बता दिया कि हमने तैयार करके रखी है काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती हुई आग। सलासल जंजीर को कहते हैं, अगलाल ये गिल की जमा है जो कि तौक होता है, गर्दन के अंदर एक ऐसी यानी लोहे की प्लेट डाल देना गर्दन के ऊपर, यानी पट्टा नहीं, जैसे रस्सी का पट्टा होता है या लेदर का पट्टा होता है, तौक उस पट्टे को नहीं कहते, बल्कि तौक एक ऐसी प्लेट को कहते हैं कि जो कि जैसे कि इसकी क्या आपके सामने मिसाल हो सकती है, जैसे कंगन हो, कंगन ठीक है, लेकिन कंगन जो है ना वो कोई बहुत ही फ्लैट किस्म का कंगन हो। ठीक है, कंगन जैसे होता है ना आप लोग जब पहनते हैं तो वो खुलता है, ठीक है, उसके अंदर बकायदा वो निब लगी होती है, पिन लगी हुई होती है, उस पिन को आप निकाल दें तो कंगन जो होता है वो हाफ वे स्प्लिट हो जाता है, पूरा खुल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप उसको हाथ पे यानी जो पहनते हैं ना, तो पहनते कैसे हैं कि उस कंगन को हाथ के ऊपर रखते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं और फिर पिन लगा देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो तौक जो है वो इस तरह की चीज होती है, लेकिन कंगन तो फिर कंगन का जो जो उसका बॉडी होती है वो तो गोल सी होती है, गोल कंगन होता है यानी चूड़ी जिस तरह की चीज होती है, लेकिन तौक वो होता है कि ये बाकायदा एक प्लेट हो, ठीक है, और इसके बीच के अंदर जो है वो दायरा हो, बीच का हिस्सा जो है वो दायरा हो, बाकी जो है वो पूरी की पूरी प्लेट हो। ठीक है, तो इस प्लेट नुमा चीज को जो है वो गर्दन के ऊपर बंद कर दे ला करके, इसको तौक कहते हैं। इसकी कोई तस्वीर ही होगी तो ज्यादा आसानी से समझ में आ सकता है। बहरहाल, तो काफिरों के लिए हमने जंजीरें और तौक और दहकती हुई आग तैयार करके रखी है, ये तीसरी बात हो गई, बल्कि चौथी बात हो गई चौथी आयत के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवी आयत से जो है वो अल्लाह ताला अबरार यानी नेकों का मामला शुरू करते हैं कि नेकों के साथ क्या क्या होगा। तो वो शुरू करते हैं कि इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। ठीक है, कि नेक लोग जो होंगे वो प्याला जिनकी काफूर के अंदर आमेजश होगी, जिन प्यालों के कंटेंट्स के अंदर, तो वो उसको पीते होंगे। ऐनै यशरबू बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा, और अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं तो वो लोग चश्मों में से पीते होंगे, और वो चश्मे भी कैसे होंगे कि जिन चश्मों को जो है वो अपनी सोने की छड़ियों के इशारे से वो उन चश्मों को मूव अराउंड कर सकेंगे, कि चश्मा जो है वो ऐसे बह रहा है तो मैं उसको चाहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं बहे, बल्कि वो उसका रुख रुख चेंज हो जाए, वो किसी और रुख में बहना शुरू हो जाए। तो इसके तहत हमने आपको क्या बताया था कि कस्टमाइजेबल चश्मे होंगे, टेलर्ड चश्मे होंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक हम उनको टेलर कर सकते होंगे। ये रेडीमेड सूट की तरह नहीं होंगे कि बस रेडीमेड सूट जो है वो तो जैसा डिजाइनर ने बनाया वैसे ही आपको पहनना है, उसके अंदर आप टेलरिंग तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, तो टेलरिंग सूट ज्यादा कीमती होता है, और चूंकि उसके अंदर आपकी अपनी एक एक ख्वाहिश मौजूद होती है कि मैं उसको ऐसे जो है वो टेलर करवा करके पहनूं, तो उसी तरीके से जो जन्नत के चश्मे होंगे ये टेलर्ड होंगे, और टेलर्ड ऐसे कि हर वक्त आप उसको टेलर कर सकेंगी। ठीक है, अपने जो छड़ियां आपको दी जाएंगी उन छड़ियों के जरिए से। तो इसको फिर हम कयास कर लेते हैं जन्नत की तमाम नेमतों के ऊपर, इसलिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर सिर्फ एक चीज का जिक्र तो फरमाया है, लेकिन चूंकि जन्नत के अंदर हर ख्वाहिश पूरी होगी तो भाई सिर्फ चश्मों को कस्टमाइज करने की ख्वाहिश तो नहीं होगी ना, फिर तो महल को कस्टमाइज करने की भी ख्वाहिश होगी, कभी महल जो है वो ऐसा बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है, लेकिन उसके अंदर मैं मजीद कुछ इम्प्रूवमेंट करा सकूं, ठीक है ना, पेंट चेंज करा सकूं, उसके अंदर जो जवाहर जड़े हुए हैं तो मैं उन जवाहरों की जो है ना वो अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लूँ, जैसे कि खवातीन अपने घरों के अंदर हर थोड़े अरसे के बाद कुछ ना कुछ अरेंजमेंट चेंज करती हैं, तो जन्नत में भी जाकर के इसी तरीके से हर नेमत जो है वो कस्टमाइजेबल होगी जन्नत की। ठीक है, तो यहाँ से फिर जन्नत के सारे अल्लाह ताला ने तफसीलात बयान करनी जो शुरू करी हैं तो वो चलती चली जा रही हैं। इसी के अंदर हमने आखिरी क्लास कहाँ छोड़ी थी, यूफून अब नजरे के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये जिन लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी ना, तो ये लोग अपनी नजरों को पूरा करते थे, ठीक है, यानी अल्लाह ताला के साथ जो भी ये वादे कर लिया करते थे तो उन वादों तक को अल्लाह ताला के साथ निभाते थे। तो जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर फराइज और वाजिबात लगाए हैं तो उनको कैसे नहीं निभाएंगे निभाएंगे, ठीक है। तो ये लोग सारे फराइज वाजिबात को भी पूरा करते थे, अपने ऊपर खुद उन्होंने जो वाजिब की हुई होती थी उन चीजों को भी पूरा करते थे। इसके बाद पेज नंबर 638 के ऊपर, 638 के ऊपर अगली आयत की तफसीर हम पढ़ते हैं, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा, यानी अहले जन्नत के ये इनामात इस सबब से भी हैं, यानी उनको ये जो इनामात मिले हैं वो उसकी वजह एक ये भी है कि वो दुनिया में मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते थे, ठीक है। क्योंकि अब हम जो है ना वो वजूहात पढ़ रहे हैं, जन्नत की नेमतों का तो हमने पीछे पढ़ लिया, अब हम इन नेमतों के मिलने की क्या वजह बनी थी, ठीक है, वो एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो एक वजह यह है कि खाना खिलाते थे। अला हुब्बिही में हर्फ अला बमानी मा है, मा का मतलब साथ, तो मा हुब्बिही इसकी तफसीर है, अला हुब्बिही की तफसीर मा हुब्बिही है, यानी उसके हुब के साथ। मतलब यह है कि ये लोग ऐसी हालत में भी गरीबों को खाना खिलाते जबकि वो खाना खुद अपने लिए भी उनको महबूब और पसंद है। यही नहीं कि अपने से जायद फालतू खाना गरीबों को दे दें, जैसे हम लोग करते हैं शादी के अंदर, जब खूब डट करके खाना खा लिया शादियों के अंदर, हत्ता के यानी जाया भी कर दिया, बेशुमार खाना तो हमारे शादियों में जाया हो जाता है क्योंकि हम प्लेट जो भर के लेकर के आते हैं ना तो खाया जाता ही नहीं है, इतनी पेट में जगह ही नहीं होती कि वो पूरी प्लेट खा सकें, तो वो फेंक जाता है, वो तो नालियों में चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देगों के अंदर इतना बच भी जाता है, अब क्या करें भाई, ये तो एक मुसीबत पड़ गई, फ्रिजों के अंदर जगह नहीं होती इतनी ज्यादा, बांटते हैं, बांटने के बाद भी बच जाता है, इसलिए कि इतना हम फजूल खर्ची करते हैं कि बांटने के बाद भी खाना बच जाता है, तो वो फिर खाना हम किसको देते हैं, गरीबों को दे देते हैं, ठीक है। तो अपने से जायद फालतू खाना गरीबों को दे दें, मिस्कीन और यतीम को खाना खिलाने का इबादत सवाब होना तो जाहिर है, ठीक है, यानी यही नहीं कि अपने से जायद, बल्कि जब खुद खाने के अंदर अपनी लगन हो कि हाँ भाई मैं, यानी बहुत ही रगबत के साथ जो इंसान खाना खाता है ना, उस रगबत वाले खाने में से कुछ निकाल करके गरीबों और मिस्कीनों को दे दें, ठीक है। जब बोसीदा मामला हो जाए, कपड़े बोसीदा हो जाए, तब जाके गरीबों को दे दें, जो उतरन होती है खाली वो जाके गरीबों को दे दें, बल्कि नहीं, इवन इस्तेमाल के अच्छे जो लायक कपड़े होते हैं जिनको कि हम पसंद करते हैं, तो अपनी पसंद में से चीजें लोगों को दे दें। क्या है वो सूरह हाफिजा साहब है माशाल्लाह क्लास में, चौथे पावे पारे का क्या है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम में से कोई नेकी उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकता जब तक कि वो उस माल में से खर्च ना करे जिसको कि वो पसंद करता है। तो नेकी मिलने की क्या शर्त अल्लाह ताला ने कुरान में लगाई है, मिम्मा तुहिब्बून, जिसमें से तुम मोहब्बत करते हो उसमें से जब तक तुम खर्च नहीं करोगे ना उस वक्त तक तुम नेकी के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। लन तनालुल बिर्रा, चौथे पारे का नाम भी यही है ना, लन तनालू, क्योंकि इसके पहले अल्फाज जो है वो लन तनालू है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको फिर जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी नियमतें मिलती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका इस्तेमाल शुदा माल है अब वो गरीबों को ना दें, ये भी इसका मतलब नहीं है कि उसको उठा करके आपने गार्बेज कर दिया और उसको जाया कर दिया, रिसाइकलिंग के अंदर अंदर दे दिया, ठीक भाई। ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिनको कि आपके उस चीज की भी जरूरत है, ठीक है, उससे वो फायदा उठा सकते हैं, तो वो भी दे दें, वो भी दें गरीबों को, वो भी पहुंचाएं गरीबों को, लेकिन कुछ अपने पसंद वाले और इस्तेमाल वाले जो, यानी जिनको आप प्रेफर करते हैं, उनमें से भी कुछ गरीबों को पहुंचा देना चाहिए। मिस्कीन और यतीम को खाना खिलाने का इबादत और सवाब होना तो जाहिर है। कैदी से मुराद जाहिर है कि वो कैदी है, ठीक ठीक है, असीर, असीर कैदी को कहते हैं कि वो कैदी है जिसको उसूल शरिया के मुताबिक कैद में रखा गया है, ख्वाह वो काफिर हो या मुसलमान मुजरिम। क्योंकि इस्लामी मुआशरे की बात हो रही है कि इस्लामी मुआशरे के अंदर जो कैदी होते हैं, ठीक है, ये बात नहीं हो रही कि किसी गैर मुस्लिम मुआशरे के अंदर मुसलमानों को जुल्मन कैद कर लिया गया है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि गैर मुस्लिम मुआशरे के अंदर जहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता हो, ठीक है, तो ऐसे मुआशरे के अंदर ना शरीयत जो है वो मुसलमानों को रहने की तरगीब नहीं देती, ठीक है, ऐसे मुआशरे में शरीयत मुसलमानों को रहने की तरगीब नहीं देती। मैं तरगीब का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लफ्ज इजाजत का इस्तेमाल नहीं कर रहा कि इजाजत नहीं देती, क्योंकि अगर कोई मजबूरन वहां पर रह रहा है तो उसका वहां पर रहना जो है मजबूरी की वजह से है। अगर शरीयत कहे कि नहीं तुम्हें इजाजत नहीं है रहने की, तो उसका रहना वहां पे हराम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शरीयत जो है वो हराम करार दे देती है कि नहीं तुमने बस इधर रहना ही नहीं है, तुम इधर से निकलो। भाई हर कोई नहीं निकल सकता, हर कोई हिजरत नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, शरीयत तरगीब नहीं देती ऐसे मुआशरे के अंदर रहना मुसलमानों का कि जहां पर उनका रहना जो है वो जुल्म के ताबे हो, यानी गैर मुस्लिम उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, उनको कैद कर रहे हो, उनको मार पीट रहे हो, ठीक है, उनके दीन से उनको रोक रहे हो, तो शरीयत तरगीब नहीं देती ऐसे मुआशरे के अंदर रहना, ठीक है। तो उस मुआशरे के अंदर अगर आप रहेंगे तो वहां पर कैदियों को खाना खिलाने का तो वैसे भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए कि ये गैर मुस्लिम लोग जो है वो आपको इजाजत को थोड़ी देंगे कि आपके जिन लोगों को इन्होंने बंद करके कैद के अंदर रखा हुआ है आप जाकर उनको मजे मजे के खाने खिलाएं, ये आपको इजाजत ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि दुनिया के अंदर कुछ इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, अब बाहर वालों को कोई वो इजाजत को थोड़ी देते हैं कि जाकर के जो है वो खाना अंदर पहुंचा करके आओ, वो तो बिल्कुल कट ऑफ होते हैं ना पूरे मुआशरे से। तो यहाँ पर किन कैदियों की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जो कि मुस्लिम मुआशरे में काजी के फैसले के तहत किसी को उसके जुर्म की वजह से कैद किया गया हो, ठीक है, उस कैदी की बात हो रही है। अब ये कैदी जो है किसी जुर्म की पदाश में कैद हुआ है ना, क्योंकि मुसलमान काजी ने इसको सजा दी है, कैदोबंद की सजा दी है, राइट। तो इस कैदी को खाना खिलाना तो उसूल शरिया के मुताबिक कैद में रखा गया है, ख्वाह वो काफिर हो या मुसलमान मुजरिम, मगर बहरहाल उसका खाना खिलाना हुकूमत इस्लामी की जिम्मेदारी है, ठीक है। काजी साहब जो बंद करते हैं ना, तो अब ये नहीं होता कि बंद कर दिया तो अब खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भूखा प्यासा वहीं पर मर जाए, नहीं, इस तरह मारने की इजाजत नहीं होती। मारना है तो भाई अगर वो यानी कत्ल का मुजरिम है तो उसको सारे लोगों के सामने जुमे की नमाज के बाद एक ऐसी जगह के ऊपर उसका सर कलम किया जाएगा, ठीक है, या उसने जो है वो चोरी करी है तो उसका हाथ काटा जाएगा, या उसने जिना किया है तो उसको रजम किया जाएगा। इस तरह को थोड़ी कि कैद के अंदर आप बंद कर दें और फिर उसको भूखा प्यासा मार दें, इसकी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर, ठीक है। तो अब कैद में बंद रखा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अब उसको खाना भी खिलाना होगा, उसको पानी भी पिलाना होगा, और उसकी जो दीगर जरूरियात हैं उन जरूरियात को भी पूरा करना होगा जो कि इंसानी जरूरियात होती हैं, तब भी जरूरियात, तो हुकूमत इस्लामी की ये जिम्मेदारी होती है। जो शख्स उसको खाना खिलाता है वो गोया हुकूमत और बैतुल माल की इआनत करता है, इसलिए कैदी चाहे काफिर भी हो उसको खाना खिलाना सवाब होगा, क्योंकि मुस्लिम हुकूमत की इआनत करना भी सवाब है। मुस्लिम हुकूमत कौन सी हुकूमत होती है, खाली मुसलमान नाम वाला अमीर ना हो, बल्कि मुस्लिम हुकूमत वो होती है जो कि शरीयत के उसूलों के मुताबिक हुकूमत के मामला चलाती हो, ठीक है, उसको मुस्लिम हुकूमत कहा जाता है, इस्लामी हुकूमत एक्चुअली ज्यादा प्रॉपर वर्ड है उसके लिए। सूद का मामला ना चलता उस मुल्क के अंदर, हुकूमत की तरफ से सूदी स्कीमें ना आती हो, हुकूमत की तरफ से बेहयाई को खुली छूट ना दी गई हुई हो, ठीक है, तो वो इस्लामी हुकूमत होती है, वो होती है मदीना की रियासत, ठीक है, जहां पे बेहयाई को खुली छूट हुकूमत की तरफ से बल्कि एयानत हो रही हो उसकी, चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमारी कोई पहली हुकूमत को थोड़ी है ऐसी, सारी हुकूमतों ने यही हरकतें करी हुई हैं, ठीक है, तो बेहयाई खुल करके खुद प्रमोट करते हैं और उसके बाद सूद को जो है वो खुद प्रमोट करते हैं, लोगों से वादे भी कर लेते हैं कि नहीं नहीं जी हम तो सूदी निजाम को खत्म कर देंगे, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो वो सबको ठेंगा दिखा देते हैं उसके बाद फिर वो, ठीक है। तो ये इस्लामी हुकूमतें नहीं होती, चाहे वो नाम कितना ही नया इस्लाम इस्लाम का, ठीक है। तो ये इस्लामी हुकूमत जो होती है, उस जो वाकई इस्लामी हुकूमत शरीयत के मुताबिक काम कर रही होती है, उसकी इआनत करना भी सवाब का काम है। लेकिन दिस इज द पॉइंट, हुकूमत की इआनत मदद करना भी सवाब का काम है अगर वो शरीयत के मुताबिक मामला चलाती हो तो। इसलिए कैदी चाहे काफिर भी हो, उसको खाना खिलाना सवाब होगा। खुसूसन इब्तिदाए इस्लाम में तो कैदियों का खाना पीना और उनकी हिफाजत आम मुसलमानों में तकसीम करके उनके जिम्मे कर दी जाती थी, जैसे गजवाए बदर के कैदियों के साथ मुआमला किया गया। तवारीर मिन फिज़्ज़ा, दुनिया में चांदी का बर्तन कसीफ होता है, आईने की तरह नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कसीफ का मतलब क्या कि चांदी जो है एक बड़े, यानी एक सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल जिसका एक वेट होता है बकायदा, और उसका यानी आप उसके थ्रू नहीं देख सकते, वो ट्रांसपेरेंट को थोड़ी होती है चांदी, तो आईने की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होती दुनिया की चांदी। और जो कांच से तैयार किया जाता है वो चांदी नहीं हो सकता, क्योंकि कांच एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, सिलिका सैंड से बनती है कांच। इन दोनों में तजाद है, ठीक है, यानी चांदी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है और कांच बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, मगर ये जन्नत की खसूसियत है कि वहां की चांदी आईने की तरह शफाफ शफाफ भी होगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जन्नत में जितनी चीजें मिलेंगी उन सब की नजीर और शबीह दुनिया में भी मिलती हैं, सिवाय इन गिलासों और बर्तनों के जिनकी साख्त चांदी से है मगर आईने की तरह शफाफ है। ठीक है, यानी ये एक ऐसी चांदी है जन्नत की चांदी कि दुनिया में ऐसी चांदी यानी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, अदरवाइज जो जन्नत की नेमत है ना, जैसे महल होंगे, तो भाई दुनिया में भी तो महल होते हैं ना। अब जन्नत का महल बहुत ज्यादा अजीम शान होगा, लेकिन महल तो होता है दुनिया के अंदर भी। उसी तरीके से सोना जो है वो भी दुनिया में होता है, रेशम वो भी दुनिया में होता है, और उसके अलावा जितनी और बहुत सारी चीजें वो दुनिया के अंदर भी जो है ना, वो एक छोटी शक्ल में, एक बहुत ही रॉ शक्ल में दुनिया में मौजूद होती हैं। लेकिन ये चांदी जो है ना, जो कि कांच की तरह से शफाफ होगी, ये रॉ शक्ल में भी दुनिया में मौजूद नहीं है। ये हजरत इब्न अब्बास का के कहने का मतलब है। वो युस्कौना फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, जंजबील के मारूफ मानी सोंठ के हैं। सोंठ क्या चीज होती है? अदरक के जो रेशे होते हैं ना, उनको सोंठ कहते हैं, जहां तक मेरा इल्म है एक्चुअली, क्योंकि हमारी वालदा उसी को सोंठ कहती थी, और सोंठ को जो है वो हमें बचपन में खूब जो है वो खिलाया जाता था तो हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज होती थी। तो जंजबील के मारूफ मानी सोंठ के हैं, और अरब लोग शराब में उसकी आमेजश को पसंद करते थे, इसलिए उसको जन्नत में भी इख्तियार किया गया। और बाज़ हजरात ने फरमाया कि जन्नत की नेमतों और दुनिया की चीजों में नाम के इश्तराक के सिवा कोई चीज मुश्तरक नहीं। ठीक है, यानी ये हजरत इब्ने अब्बास वाला कॉल जो है वो बज़ाहिर डिफरेंट कॉल लगता है कि नहीं, हर चीज की नजीर दुनिया में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि नाम के सिवा कोई चीज मुश्तरक नहीं है, यानी जन्नत की जो चीजें हैं ना, तो वो चीजें जो है वो दुनिया के अंदर बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इनमें बज़ाहिर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब यही है कि वहां पर जो जंजबील है ना, वो भी दुनिया की जंजबील की शक्ल की ही होगी, लेकिन उसका जो टेस्ट होगा, वो टेस्ट जो है ना, वो दुनिया की जंजबील के मुकाबले में पता नहीं कितने हजार गुना जो है वो ज्यादा अच्छा होगा और यानी मजेदार हो, राइट। तो ये तो हर चीज के साथ ही है, ठीक है, इसलिए वहां की जंजबील को दुनिया की जंजबील पर कयास नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया के अंदर जो जंजबील है, जब हम कम से कम अपने इलाकों में जंजबील खाते हैं या उसका कोई शरबत पीते हैं ना, तो हमसे तो पिया ही नहीं जाता। मैं आपको बताया भी था कि एक दफा लेकर आ गया था, किसी स्टोर में मिल रहा था, तो भाई अच्छा जी ये तो यानी कुरान में इसका जिक्र है, तो चलो लेके चलते हैं पीते हैं, लेकिन उसका तो एक घोट भी नहीं हलक से उतरता था। पता नहीं कुछ अरब लोग पी लेते होंगे, उनको शायद आदत होगी उसकी। एनीवे, वहुल्लू असाविर मिन फिद्दा, असाविर सवार की जमा है, सवार उनकी, कंगन को कहा जाता है जो हाथों में पहनने का जेवर है। अब इसको सुनिए, पढ़ते हैं या सवार मुझे किशोर ने। तो कंगन जो हाथों में पहने पहनने का जेवर है, इस आयत में चांदी के कंगन का जिक्र है, और एक दूसरी आयत में असावरा मिन जहब का भी जिक्र आया है, यानी कंगन सोने के। तो इन दोनों में भी कोई तादाद नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी वक्त चांदी के और किसी वक्त सोने के कंगन इस्तेमाल किए जाए। जन्नतियों को सोने चांदी जैसे कि आपकी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर हर किस्म की चीजें होती हैं, उसी तरह से उनके यहाँ भी जन्नत में भी हर किस्म के कंगन होंगे, या बाज के कंगन सोने के हों और बाज के चांदी के। मगर एक सवाल इस जगह बहरहाल है कि चांदी के कंगन हो या सोने के, बहरहाल ये जेवर है जो औरतों के इस्तेमाल के लिए होते हैं, मर्दों के लिए ऐसे जेवर पहनना ऐब समझा जाता है। जवाब यह है कि किसी चीज का औरतों या मर्दों के लिए मखसूस होना और उनके लिए मुस्तहसन या ऐब होना, ये चीज तो उर्फ व आदत के ताबे होती है, फैशन के। ठीक है भाई, आजकल कौन सा वाला फैशन चल रहा है, पतली पैंटों का फैशन चल रहा है कि मोटी पैंटों का फैशन चल रहा है? तो ये तो फैशन के हिसाब से होता है ना, दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं। तो जवाब यह है कि किसी चीज का, अच्छा ये तो उर्फ और आदत के, जिसको आप फैशन कह सकते हैं अंग्रेजी में, उसके ताबे होती है। बाज मुल्कों या कौमों के लिए बड़ी ऐब और बुरी समझी जाती है, लेकिन दूसरी कौमों में वो बड़ा हुसन समझा जाता है। जैसे अफ्रीका के आप कुछ एबोरिजिनल ट्राइब्स में चले जाएं, या ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिन होते हैं ओरिजिनल, बिल्कुल वहाँ पे जो वैशी किस्म के ट्राइब्स होते हैं, तो उनके यहाँ आप देखेंगे नेशनल ज्योग्राफिक के जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर उनकी तस्वीरें होती हैं, उन्होंने ये कंगन वगैरह पहने होते हैं मर्दों ने। तो ये तो फैशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसी जगह कोई फैशन, किसी जगह कोई। दुनिया में मलूक, मलूक कसरा, ठीक है, यानी कसरा के जो बादशाह होते थे, आप म्यूट कर लीजिए राजे साहब, यानी जो ईरान के बादशाह, उनको कसरा कहा जाता था। तो वहां के जो बादशाह होते थे वो हाथों में कंगन और ताज में मुगरात इस्तेमाल किया करते। आप उनको म्यूट कर सकती हैं मैम। और ये उनका खास इम्तियाज व एजाज समझा जाता था। मुल्क कसरा फतह होने के बाद जो खजाइन, खजाइन कसरा मुसलमानों को हाथ आए, उनमें कसरा के कंगन भी थे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि वो जो क्या नाम था उन सहाबी का जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का पीछा किया था हिजरत मदीना के रास्ते में, और फिर उनका घोड़ा जमीन के अंदर धस जाता था, सुराका जी, तो हर दफा धस जाता था, तो फिर बिलाखिर उसने तौबा करी और इस्लाम लाने का वादा किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके साथ उसको बशारत दी थी कि तुम कसरा के कंगन पहनोगे। ठीक है, फिर कितने सालों के बाद जब ईरान फतह हुआ तो सुराका वहां पर मौजूद थे और कसरा के कंगन फिर इनके हाथ में आए, तो इनको आका अलैहिस्सलाम की वो बात याद आई कि आप आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये वादा किया था। तो जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों के मामूली जुग्राफियाई और कौमी तफावुत से ये मामला मुख्तलिफ हो सकता है, तो जन्नत को दुनिया पर कयास करने के कोई मानी नहीं हो सकता। नहीं, हो सकता है कि वहाँ जेवर मर्दों के लिए भी मुस्तहसन समझा जाए, वहाँ का फैशन ये हो कि भाई लोग जेवर पहना करें मर्द और औरतें दोनों। आजकल भी जो ये हम ये जो वॉचेस पहनते हैं, ये जो घड़ियां होती हैं राडों की घड़ी कोई पहन रहा है कोई किसी की, तो कुछ मर्द तो माशाल्लाह वो सोने चांदी की घड़ियां पहनते हैं, तो वो क्या उनको कंगन ही कह सकते हैं? वो भी तो कंगन के एक शकर ही है ना, हाथ के ऊपर पहने जाते हैं बकायदा। इन हाजा काना लकुम जजाउ व काना सायुकुम मशकूरा, यानी अहले जन्नत को जन्नत में पहुंचने के बाद हक ताला की तरफ से खिताब होगा कि जन्नत की ये मुहैयरुल उकूल नेमतें, यानी ऐसी नेमतें जो कि अकल को मुहैयर कर दें, यानी अकल को जो है वो माउफ कर दें, घुमा दें आपकी अकल को, ऐसी नेमतें, ये सब तुम्हारे उन आमाल की जजा है जो तुमने दुनिया में किए थे, और तुम्हारे अमल अल्लाह के नजदीक मकबूल हो गए। ठीक है, यानी आमाल की जजा जो है वो जन्नत की नेमतें होती हैं। ठीक है, लेकिन जन्नत में एंट्री कैसे होती है? एंट्री आमाल से नहीं होती, एंट्री ईमान से होती है। ईमान है तो आमाल फिर जन्नत के अंदर ये नेमतें कमा के देंगे, क्योंकि ये आमाल जो है वो जन्नत की करेंसी है, ये जन्नत के नोट हैं, जन्नत के कॉइन्स हैं, इनके बदले जो है वो जन्नत की नेमतें मिलेंगी। ये नहीं कि हमें बाकायदा बाजार में जाके खरीदना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली जो है ना वो आमाल का हिसाब करके हमें नेमतें अता की हुई होंगी। तो ईमान के बगैर इन अमाल का कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात यह है कि अमाल भी ऐसे हों कि जो कि अल्लाह की रजा और जन्नत की जजा के लिए, आखिरत की जजा के लिए किए गए, यानी नीयत भी जिनके अंदर सही नीयत हो, तो फिर वो अमाल मकबूल भी होते हैं। और ये जो नेमतें हैं वो मकबूल अमाल के नतीजे में मिलेंगी, गैर मकबूल अमाल के नतीजे में नहीं मिलेंगी। बस ये दो बातें हमें याद रखनी चाहिए अमाल करने के साथ साथ, एक तो ईमान की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है और दूसरी नीयत की हिफाजत, ये दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कलिमात उनको बतौर मुबारकबाद के कहे जाएंगे। अहले इश्क व मोहब्बत से पूछिए तो जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ और रब्बुल आलमीन का ये फरमाना एक तरफ सब नेमतों से बढ़कर है कि इसमें हक तआला उनको अपनी रजाए कामिल की सनद दे रहे हैं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ना उनसे यानी मशकूर हैं, यानी उनको बीइंग ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड, ठीक है, यानी अल्लाह ताला कुछ हमने कोई अल्लाह पे एहसान तो नहीं किया ना नेक अमाल करके या ईमान ला करके, लेकिन अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि वो हमारे नेक अमाल को जो है ना वो कबूल फरमा लेते हैं और उसके बदले जो है वो ऐसी मुहैयरुल उकूल नेमतें अता फरमा देते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की रजा की ही दलील ना कि भाई अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, यहाँ पर मैं तुमसे राजी हूँ, अब मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होगा। तो ये चीज सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की रजा की सनद मिल जाना, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं है। चांदी भी हराम है आदमियों पर, किसी ने प्राइवेटली सवाल लिखा है। नहीं, चांदी जो है वो मुतलकन तो हराम नहीं है सोने की तरह, लेकिन चांदी की कोई मकदार होती है, वो मकदार मेरे जहन में नहीं है कि इतना जो है वो मर्द पहन सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं पहन सकते। वो देखिए फिका किताब में देखने जाएगा। अच्छा, आम अहले जन्नत के इनामात का जिक्र करने के बाद खास उन इनामात का जिक्र किया गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबजूल हुए। उनमें सबसे बड़ा इनाम तंजील कुरान है, यानी कुरान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नुजूल, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ। तो जिस कल्ब के ऊपर अल्लाह ताला का कलाम बराह रास्त नाजिल हुआ हो, सिर्फ जिब्राइल अलैहि सलाम बीच में एक वास्ता थे, तो उस कल्ब का फिर क्या हाल होगा, क्या मामला होगा। तो उस कल्ब के लिए तो ये सबसे बड़ी नेमत है ना कुरान का नुज़ूल कल्ब के ऊपर होना, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे बड़ा इनाम तंजील कुरान है। इस इनाम अजीम का जिक्र करने के बाद अव्वल तो आपको इसकी हिदायत की गई कि मुखालिफीन और कुफार की तरफ से जो जिद और इनकार और उनकी ईजाओं की तकलीफ आपको पहुंचती है, आप उस पर सब्र से काम लें। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला पहली ईजा क्या होती है कि ये आपकी दावत को इग्नोर कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है, हालांकि अजीज हैं, रिश्तेदार हैं और आपकी बड़ी वाहवा करने वाले भी हैं, सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं और अपनी अमानती भी रखते हैं और अपने फैसले भी करवा लेते हैं। ठीक है, वो जो हजर असद वाला मशहूर फैसला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से करवाया। ठीक है, तो इतनी आवभगत करने वाले, लेकिन जब आप ये वाली बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो इसी से जो अजियत पहुंचती है ना, रूहानी अजियत जो दिल को जो पहुंचती है, ये यही काफी होती है हम जैसे लोगों के लिए। तो ठीक है कि भाई आप तो करीबी थे, आप तो ऐसे थे, आप तो मानने वाले थे, फिर आपने ऐसा क्या कर दिया। तो इसी से दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर के जुबान से जो है वो बुरी बुरी बातें भी कहना, हाथ टूट जाए तेरे, जैसे कि अबू लहब ने कहा था। फिर उसके बाद बाकायदा फिजिकली भी टॉर्चर करना, तो ये सारी चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहनी पड़ती थी अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से। तो आप उस पर सब्र से काम लें। दूसरे, अल्लाह की इबादत को दिन रात का मशगला बनाए, इसी से कुफार की अजियत का भी ज्यादा होगा, क्योंकि रूहानी तकलीफ जो पहुंचती है तो इसके लिए रूहानी मरहम की भी जरूरत पड़ती है। और रूहानी मरहम क्या है, ये अल्लाह ताला का जिक्र है और इबादत है। ठीक है, तो यानी अगर सुन्नत तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करें, ठीक है, नीयत भी खालिस हो और तरीका भी नबी अलैहि सलाम वाला ही तरीका हो ना, तो फिर दिल को इस इबादत से वाकई इत्मीनान मिल जाता है। ठीक है, अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये इसके अंदर कोई शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ मसला ये होता है कि हम दरअसल कर नहीं रहे होते हैं ठीक तरीके से। अगर हम ठीक तरीके से करें तो क्यों नहीं दिल को इत्मीनान मिलेगा, 100% मिलेगा। ये तो रूह की ग़िज़ा है, यही तो रूह की ग़िज़ा है। आखिर में मुआनिद कुफार, यानी जो इनाद के ऊपर उतरे हुए काफिर थे, दुश्मनी पे उतरे हुए काफिर, तो मुआनिद कुफार के कुफर पर जमे रहने की वजह बताई कि ये जाहिल दुनिया की सफी सरसरी और फानी लज्जतों में ऐसे मस्त हो गए कि अंजाम को यानी आखिरत को भुला बैठे। यही होता है शहवात में पड़ने वाले इंसान का मसला, यही होता है कि वो अपनी मौत से गाफिल हो जाता है। वो चारों तरफ लोगों को मरता हुआ देख रहा होता है, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, बच्चों को भी, हत्ता के अपने दोस्त यारों, अपने घर के रिश्तेदारों को मरता हुआ देखता है, लेकिन अपने बारे में समझ रहा होता है कि उसने तो यहीं पर रहना है और उसको कुछ नहीं होने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, उसने यहीं रहना है। तो इस वजह से ना वो दुनिया की जो लज्जतें होती है वो समझता है कि ये लज्जतें मैं पा लूंगा ना तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, मेरी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी, और अगर मैं दीनदार बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। और ये किस लाइफ की बात कर रहा होता है, किस लाइफ को सेट करने और किस लाइफ के खराब होने की बात कर रहा होता है, जिस लाइफ का इसको इतना भी नहीं पता होता कि कल तक बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी, इतना भी नहीं पता होता। अगर आप किसी काफिर से कहें या किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे मुसलमान से कहें जो कि लज्जतों के अंदर पड़ा हुआ है, शहवात के अंदर, या शहवात के पीछे जो है वो मरा चला जा रहा है, तो ऐसे शख्स से कहें ना कि जी तुम्हारे बैंक में अगर $10,000 हैं, ठीक है ना, एक मीडियम लेवल का कोई अमीर हो जिसके पास बैंक में $10,000 पड़े हुए, उसे कहेंगे $10,000 का ना तुम पे ऑर्डर बना करके मुझे दे दो, ठीक है, और उसके साथ कोई शर्त लगा दो कि अगर तुम कल नहीं मरते हो तो ये $10,000 जो है वो मेरे हो जाएंगे, ठीक है, कल अगर तुम नहीं मरते हो ना तो ये $10,000 मेरे हो जाएंगे, तो वो कभी भी इस तरह से आपको $10,000 का पे ऑर्डर बना करके नहीं देगा, इसलिए कि वो कभी गारंटी कर ही नहीं सकता कि वो कल नहीं मरेगा। अब $10,000 जाने की बात आएंगे ना, अब वो जरा सोचेगा, ठीक है, ऐसे तो वो कहेगा हाँ मैं नहीं, कोई मरता, मैं कोई नहीं मरता, जुबानी कलामी बात करेंगे तो कहेगा मैं कोई नहीं मरता, चलो चलो ऐसी बातें ना करो, ठीक है, लेकिन अपनी दौलत दांव पे लगाने के लिए वो कभी तैयार नहीं होगा इस बुनियाद के ऊपर कि यानी अगर वो नहीं मरा तो ये दौलत उसकी गई सारी की सारी, ठीक है ना, फिर वो कभी राजी नहीं होगा, इसलिए कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, कोई काफिर हो, मुसलमान हो, जैसा भी हो, अल्लाह का वली क्यों ना हो, वो कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ऐसी जो लज्जतें होती हैं, सरसरी होती हैं, बहुत ही सुपरफिशियल और फानी होती हैं, तो उनके अंदर हम ऐसे मस्त हो जाते हैं कि मौत को भूल जाते हैं। आखिरत तो बहुत देर में आएगी, जो अभी फौरन आने वाली चीज होती है जिसको मौत कहते हैं उसको हम भूल बैठते हैं। हालांकि हमने दुनिया में भी खुद उनके वजूद में ऐसी चीजें रखी थी कि इनमें गौर करते तो अपने खालिक और मालिक को पहचानते। मसलन नहनु खलकनाहुम व शददना असरहुम, यानी हमने ही उनको पैदा किया और उनके वजूद की सनत में एक खास कमाल ये रखा कि उनके जोड़ बंद मजबूत और मुस्तहकम बनाए, ठीक है, यानी अल्लाह ताला इस आयत में अब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ, किसकी बात कर रहे हैं, हमारे जो जो बॉडी के अंदर जोड़ होते हैं यानी जॉइंट्स जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, जैसे कि उंगली आपकी एक एक उंगली होती है, इस एक उंगली के अंदर कितने जॉइंट्स हैं जरा सामने रख लेना, तो एक जो जहां पे कि वो खाल जो होती है वो थोड़ी सी नरम हुई हुई होती है ना, ये लाइंस बनी हुई होती हैं उंगली के ऊपर, ये लाइंस क्यों बनी हुई होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर खाल को जो है वो जरा ढीला छोड़ दिया है। ढीला क्यों छोड़ रहा है, यहाँ पे खाल टाइट क्यों नहीं है बाकी उंगली की तरह से, वो इसलिए कि ये जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर हमारी उंगली ने मुड़ना है, अगर ये खाल टाइट बनाते अल्लाह ताला जिस तरह बाकी उंगली की खाल टाइट है, जब हम उस उंगली को मोड़ते, वो जोड़ को मोड़ते, तो ये खाल जो है या तो वो फट जाती या अगर फटती नहीं तो तकलीफ होती। तो देखिए अल्लाह ताला ने इस जोड़ के ऊपर खाल को नरम बना दिया, स्ट्रेचेबल बना दिया, इस स्ट्रेचेबल बनाने की वजह से इसके ऊपर ये लकीरें हैं, सबको सामने नजर आ रहा होगा ना, हर एक के पास माशाल्लाह हाथ तो है ना, ठीक है, तो अपने हाथ के सामने रखने देखने उसको, और थोड़ा सा और बड़ा जोड़ देखना हो कोहनी कोहनी को देख लें, ठीक है ना। हाथ की जो कोहनी होती है तो उस कोहनी की जो खाल होती है वो क्यों इतनी नरम होती है? क्यों अल्लाह ताला ने वो खाल नरम बनाई? क्योंकि इस हाथ को आपने कोहनी पर से मोड़ना होता है, आप मोड़ सकते हैं उसको। तो देखिए अल्लाह ताला ने वहां पर स्ट्रेचेबल खाल बना दी। ये खाल बाद में जाके स्ट्रेच नहीं होती, बच्चा जो पैदा होता है ना उस वक्त से ये स्ट्रेचेबल खाल होती है। अल्लाह ताला ने माँ के पेट से ये स्ट्रेचेबल खाल बना करके हमें भेजा हुआ होता है। कैसी परफेक्शन है अल्लाह ताला की तकदीर के अंदर, ठीक है। तो ये खाल की स्ट्रेचिंग हो तो ये तो एक नेमत है ना। फिर उसके बाद ये जो जोड़ है, ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के बारे में तो खुद हजरत लिखते हैं, उसी को पहले पढ़ लेते हैं कि इंसानी जोड़ बंद में करिश्माए कुदरत। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि इंसान अपने एक एक जोड़ बंद पर, यानी एक एक जॉइंट पर नजर डाले कि बतकाजाए हिकमत और राहत इंसानी जोड़ देखने में नरमो नाजुक मालूम होते हैं, और नरम नरम पट्टों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। यानी ये जो जॉइंट्स होते हैं ऊपर से, तो अभी हमने खाल का जिक्र किया ना, खाल तो ऊपर होती है, लेकिन इन जोड़ों के दरमियान अल्लाह ताला ने टिश्यूज बनाए हैं, ठीक है। अजीब अजीब तरह के टिश्यूज होते हैं। किसी के अगर घुटने का ऑपरेशन हुआ हो, आजकल तो काफी लोगों का होता है, मेरा भी हुआ था आज से कोई 10-12 साल पहले, तो घुटने का ऑपरेशन जो होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो टिश्यूज होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, मिनिस्कस कहते हैं, मिनिस्कस टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज जो होते हैं बाकायदा स्पंज की तरह से होते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए स्पंज है। ये स्पंज जो है वो घुटने के अंदर होते हैं, और ये जो है ना वो घुटनों के जो जो आपके जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को ऐसे पॉसिबल करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे ये मूव हो रहे हैं, और यानी कोई कोई आपको तकलीफ ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो नर्म नाजुक मालूम होते हैं, और नरम नरम पट्टों के जरिए, यानी इन मेनिस्कस टिश्यूज टाइप की चीजों के जरिए से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसका तभी तकाजा ये था कि साल 2 साल ही में ये जोड़ों के बंधन और आसाब घिस जाते। भाई घिसना भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना चीजों का, तो ये घिस जाते और टूट जाते हैं, खुसूसन जबकि वो दिन रात हरकत में रहते हैं, मोड़े तोड़े जाते हैं, हर वक्त आप अपने जोड़ों को मोड़ते रहते हैं। इतनी शबाना रोज हरकत के साथ तो लोहे के स्प्रिंग भी साल 2 साल में घिसकर टूट जाते हैं। ये नर्मो नाजिक पट्टे, नाजुक पट्टे देखो किस तरह आजा के जोड़ों को बांधे हुए हैं, ना घिसते हैं और ना टूटते हैं। इंसान अपने हाथ की उंगलियों के जोड़ों को देखे और हिसाब लगाए कि उम्र भर में इन जोड़ों ने कितनी हरकतें की हैं, कैसे कैसे जोर और दबाव उन पर डाले गए हैं कि अगर फौलाद भी होता तो घिस गया होता, मगर ये जोड़ हैं जो 70-80 साल चलने पर भी अपनी जगह पर कायम है, ठीक है, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, तो ये घिसते नहीं है। अब इसके ऊपर कोई साइंसदान साहब आ जाए, हमारे जैसे साइंस पढ़े हुए मुसलमान, तो वो तो फौरन, भाई ये क्यों नहीं घिसते? वो इसलिए नहीं घिसते क्योंकि आप जो खाना खाते हैं ना, तो खाने से जो है ना वो ये टिश्यूज जो होते हैं ना उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहता है, तो वो जो घिसते तो हैं लेकिन घिसने के साथ साथ जो है वो फिर रिक्रिएट भी होते रहते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है और साथ साथ एनेबॉलिज्म भी हो रहा होता है, ठीक है। सेल्स जो है वो आपके खत्म भी हो रहे होते हैं और साथ साथ सेल्स जो है वो बन भी रहे होते हैं। तो भाई बेशक ऐसा हो रहा होता है, लेकिन ये भी तो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा होता है ना। ये जो खाना आप खा रहे होते हैं, इस खाने को सेल्स में कन्वर्ट कौन करता है? अल्लाह ताला के हुक्म से कन्वर्ट होता है, अल्लाह ताला की मर्जी से कन्वर्ट होता है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी ना हो तो आप कितने अच्छा अच्छा खाना खा लें, आपके सेल्स बनना बंद हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, टिश्यूज वाली बीमारी जिसके अंदर आपके टिश्यूज डेवलप होना खत्म हो जाए, फिर देखें आप क्या करते हैं आप इसके बाद। तो अल्लाह ताला ने खाने का सिस्टम किया कि ये जो जोड़ हमारे घिस रहे होते हैं तो अल्लाह ताला ने इनकी री इन्फोर्समेंट का भी इंतजाम किया हुआ है कि खाना खाते हैं और ये री इन्फोर्स हो जाते हैं। अच्छा, अब इतने लोगों को जो जोड़ों की तकलीफें हुई हुई हैं आज के दौर के अंदर, तो इसमें अल्लाह ताला का कसूर नहीं है, बल्कि इसमें हम इंसानों का कसूर है कि हमने जो है ना वो साइंसी तरक्की के बहाने से ऐसी ऐसी चीजें ईजाद करी हैं, और हम उनसे बड़े राजी और खुश हैं उन ईजादात से, कि जिनकी वजह से जो हमारे खाने की चीजें हैं ना उनके अंदर फायदेमंद अज्जा कम हो गए हैं और नुकसानदेह अज्जा बढ़ गए हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल बढ़ गया है। ये सारी साइंटिफिक ईजादात की वजह से, ये सारी जो फैक्ट्रीज के अंदर से जो धुआं निकलता है ना और जो गैसेस खारिज होती हैं, इन सब का असर जो है वो पूरे की पूरी दुनिया की प्रोडक्शन पर होता है। तो जो आप सब्जियां खा रहे होते हैं, जो आप मछली खा रहे होते हैं, गोश्त खा रहे होते हैं, जानवरों का गोश्त खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, हर चीज के अंदर किसी ना किसी हार्मफुल इंग्रेडिएंट की मात्रा बढ़ चुकी है। मछली के अंदर मरकरी बढ़ चुका है, मरकरी, और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि जो 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 इन्हीं के ये लोग बदबخت जो है ना, यही क्रिएट भी करते हैं, यानी यही जो है वो इन्वेंट भी करते हैं इन बुराइयों को, और फिर यही जो है वो रिसर्च भी करते हैं, और रिसर्च के बाद जो है ना वो हार्मफुल असरात के ऊपर पेपर्स भी लिखते हैं, ताकि दुनिया वालों को जिस्मानी तौर पर तो इनकी इजादात जो है वो वैसी बर्बाद कर रही होती हैं, नफसियाती तौर पर भी लोगों को बर्बाद कर, ठीक है, कि ताकि बता बता के देखो जो तुम खा रहे हो ना, इससे तुम्हें ये नुकसान हो रहा है, तो खाओ भी, खाना भी मत रोको, लेकिन साथ साथ जो है ना वो इस टेंशन में भी मुबतला रहो कि इस खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो। तो सोच सोच करके लोग और ज्यादा बीमार हो रहे होते हैं, खा खा के आधे बीमार होते हैं ना, तो सोच सोच करके बाकी आधे भी बीमार हो जाते हैं, ठीक। तो ये है काफिरों का निजाम, जिनका अल्लाह ताला से कोई मानने वाला ताल्लुक नहीं होता, तो फिर वो ऐसे ही अपनी ऐसी करते हैं फिर हरकतें। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यही जो है वो हम सारे के सारे कर रहे हैं, गोरे साहब के पीछे भागते फिर रहे हैं, हर चीज गोरे साहब से चाहिए, हर चीज गोरे साहब से चाहिए, हत्ता कि अब तो इस्लाम भी गोरे साहब से चाहिए, ठीक है ना। वो गोरे साहब को इस्लाम लेकर के आ जाए ना, तो वो इस्लाम हमारे यहाँ काबिल कबूल हो जाता है, और मौलवी साहब लेकर के आ जाए हमारे इलाके के, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होता। तो यही है बस। तो इस वजह से जो आर्थराइटिस की जो इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, ये जो टिश्यूज हमारे घिस जाते हैं, ये जो हमारी जोड़ जो है वो खोखले हो जाते हैं, कैल्शियम जो है वो यानी आपका बिल्ड ही नहीं हो पा रहा होता है, वाइटामिन डी की कमी हो जाती है, और ना जाने क्या क्या चीजें जो है वो हमारे अंदर हो चुकी है, हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये मॉडर्न डिस्कवरीज और इन्वेंशन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से जरा ये जो हम इतना दीन 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 खेल रहे हैं ना आजकल, दीन दीन पढ़ रहे हैं, दीन दीन खेल रहे हैं, दीन दीन पिट्टू पिट्टू वाला जो गेम खेलते हैं, तो जरा हम अपनी सोचों को भी जो है वो दीन के मुताबिक करने की कोशिश करें, ठीक है ना। सोचें दीन के मुताबिक क्या होती हैं, कुफर और काफरी से नफरत, कुफर और काफरी से नफरत, ये दीन के लवाजिमात में से है, ठीक है। काफरी जो कुफर ने जो निजाम बनाया दुनिया का, जब तक मोमिन के दिल में उस निजाम से नफरत नहीं होगी, क्या पिट्टू पिट्टू का गेम खेल रहे हैं हम लोग, ये क्या दीन दीन का गेम खेल रहे हैं, इसकी हैसियत पिट्टू पिट्टू का गेम से ज्यादा नहीं है, सही है। काफिर से नफरत नहीं हुई, काफिर के बनाए हुए निजाम से नफरत नहीं हुई, काफिर के बनाए हुए जो है वो तालीमी निजाम से नफरत नहीं हुई, उसी को अपनी निजात का, अपनी औलादों की निजात का सबब समझते आ रहे हैं, ठीक है ना। कुफर के बनाए हुए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उससे नफरत नहीं हुई, बल्कि क्या सूरह रहमान की तिलावत चलाते हैं, वो वीडियो क्लिप बनाते हैं, उसके अंदर इनकी इंडस्ट्रीज की जो बनी हुई प्रोडक्ट्स है ना, राइट, सारी की सारी जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं ये खुदी, तो उनके साथ साथ सूरह रहमान की तिलावत चलाते हैं कि फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, कि किन किन अल्लाह ताला की नेमतों को झुटलाओगे। अब वो नेमतें क्या होती हैं, देखने में कितनी लजीज लगती हैं, कितना उनके अंदर जूस निकलता है, लेकिन खाने के बाद जो है ना फिर वो फिर सारा का सारा हमारा दिमाग, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो रहा होता है दिमाग के साथ, ठीक है। और उसके ऊपर हम फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ये अल्लाह की नेमत होती है कि जिसको खाने से इंसान बीमार पड़ जाए, जिसको खाने से जो है वो उसकी सारी सलाहियतें जो है वो मफलूज हो जाए, ये अल्लाह की नेमत होती है। लेकिन हमारा यही मामला है, हमें सूरह रहमान तो याद हो गई है, लेकिन हमें इतनी समझ में नहीं आई कि कुफर के अंदर खैर नहीं हो सकती, काफरी के अंदर खैर नहीं हो सकती, इतनी हमें बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये कुरान की तफसीर जो आप लोग पढ़ रही है ना, तो इसके ऊपर भी जरा तवज्जो दें कि ये जरा अपनी सोचों को भी जो है वो कुरान के मुताबिक बनाने की जरूरत है। सिर्फ अल्फाज पढ़ लेना और चंद जो है वो ग्रामर सीख लेना और इस तरह की चंद एक फिका की जो है वो आपने निटी ग्रिटीज ऑफ फिका पढ़ लेना, ये असल मकसद नहीं है दीन का, ठीक ना। ये तो फुरुआत है, ये फुरुआत है, ये असल नहीं है। असल का मतलब होता है बेस, रूट, जड़। और जड़ क्या है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के दुश्मनों से नफरत, ये जड़ है दीन की। और अगर आपके अंदर ये जड़ी अभी तक पैदा नहीं हुई है, तो आप जो है वो टहनियां बनाए चले जा रही हैं, टहनियों पर टहनियां बनाए चले जा रही हैं, और इन टहनियों के नीचे कोई ना तना है ना कोई जड़ है, ठीक है। तो ये जो हम आपके साथ जो क्लास कर रहे हैं ना, हफ्ते के अंदर एक दफा जो क्लास होती है, ये इस असल की वजह से है। बाकी हफ्ते जो आप क्लास लेती हैं ना, ये फुरुआत वाली क्लासेज है जो आप बाकी हफ्ता ले रही होती हैं, ठीक है। असल की क्लास ये वाली क्लास है, ताकि आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो और अल्लाह के नाशुक्री की नफरत पैदा हो, अल्लाह ताला के इनकार की, अल्लाह के रसूल के इनकार की, अल्लाह के दीन के इनकार की नफरत पैदा हो, ठीक है, ताकि आपके अंदर कुछ बुनियादें भी पैदा हो सके, ठीक है। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। अलहमदुल्ला सूरह दहर जो है वो आज पूरी हो गई। इसके बाद फिर सूरह मुरसलात शुरू कर लेते हैं। सारी अल्लाह ताला के कुरान की आयात हैं और इनके अंदर भी इंशाल्लाह फायदे की चीज़ें होंगी। सूरह मुरसलात के बाद फिर देखेंगे कि शायद हम इस आरे को फिर हम शुरू से लेकर के यहाँ तक मुकम्मल कर लें जहाँ तक हमने पढ़ा है। और चल जी, कोई सवाल नहीं किसी के पास? इसके अंदर एक्चुअली ये चल रही थी, सूरह कलम सूरह हाफ था, तो हो सकता है हम सूरह मुरसलात के बाद जो है ना वो किसी और पारे पर आपको, ठीक है। खैर, अगर कोई सवाल नहीं है और किसी ने रेज हैंड भी नहीं किया कि वो सवाल लिख रही है, तो हम इंतजार कर लिया। कोई लिख रहा है तो रेज हैंड का बटन प्रेस कर लें, उनका इंतजार कर लिया। नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि क्लास खत्म की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।